ओम शांति। पहले तो मैं सभी को दो बातें याद दिलाऊं। प्रकृति को रोज सकाश देना है 15 मिनट, ये काम भूलना नहीं है, तो हम सुरक्षित रहेंगे प्रकृति के बहुत सारे प्रकोपों से। और दूसरी बात है, अपने चारों ओर शक्तिशाली आभा मंडल बनाना, रोज दो बार तो जरूर सवेरे और शाम। इससे हर चीज से हम सेफ रहेंगे, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। नष्टो मोहा, मुझे याद आए जब ये टॉपिक दिया गया बाबा का महावाक्य कि देखो तुम्हारी पढ़ाई और तुम्हारा एग्जाम ऐसा कि बाबा ने पहले ही पेपर आउट कर दिया है कि अंतिम पेपर नष्ट मोह का होगा, फिर भी बहुत कम पास होते हैं, क्योंकि मोह गहरी जड़े जमा चुका है हमारे अंदर। देह में रहे ही है आत्मा, आत्मा जब प्रकृति के संपर्क में रहती है तो देह से मोह बढ़ता जाता है, फिर देह के आगे पीछे सबसे मोह बढ़ता है। कभी बाबा ने ये भी कहा, दोनों बातों को आज हम लेंगे, कई बच्चे देहधारियों के मोह से जल्दी मुक्त हो जाते हैं लेकिन पदार्थों का मोह नहीं छूटता, अपना सब कुछ छोड़कर भी ठिकरियों में मोह रहता है, बाबा ये सब बोलते थे। हमने ये चीज प्रैक्टिकल भी देखी किसी के जीवन में। तो हमें निर्मोही बनना है, क्योंकि अंतिम हमारी स्थिति सर्वश्रेष्ठ यही है, एक के सिवाय कुछ भी याद ना आए, सर्वश्रेष्ठ गति है ये। और ये भी दूसरी गति है इस सृष्टि की कि जिसमें हमारा लगाव होता है वो अंत में हमारे सामने आ खड़े होते हैं, ये ऑटोमेटिक है। आप बहुत जगह सुनते होंगे फलाना व्यक्ति बीमार था, आखिरी दिन बिल्कुल ठीक हो गया, फ्रेश, चेहरा चमकने लगा, शाम को शरीर छोड़ दिया। अभी भी कोई केस ऐसा ही है, किसी की मां ने शरीर छोड़ा, बीमार थी वो लंबे समय से, मेरे से पूछा भाई बहुत बीमार है, दुखी है, हम भी चाहते हैं शरीर छोड़े, वो भी चाहती है शरीर छोड़े, मुक्त हो आत्मा देह से। तो मैंने एक छोटी सी विधि बताई थी आपके फायदे के लिए। मैंने कहा पानी को चार्ज करो, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, मास्टर मुक्ति दाता हूं, 7 बार संकल्प करो, पिलाओ कई बार, और इससे ही वो मुक्त हो गई। तो बताया कि लास्ट दिन बिल्कुल फ्रेश हो गई, हम सब ने सोचा तो ठीक हो गई है मम्मी, और शाम को शरीर छोड़ा। ठीक इसलिए हो गई, फ्रेश इसलिए हो गई, मेमोरी फ्रेश हो गई, और सब कुछ जो उसके अच्छे या बुरे सब थे वो मेमोरी में जागृत होने लगे। तो हम सभी अब चिंतन करेंगे थोड़ा, सभी चिंतन करें, मोह सबके अंदर रहता है, किसी एक की बात नहीं, ये नहीं माताओं को है, भाइयों को नहीं है, सबको होता है। अपनी ड्यूटी से भी ममत्व रहता है, अपने साधनों से भी ममत्व रहता है, अपने मान सम्मान से भी ममत्व रहता है, मनुष्यों से रहता है, किसी में संस्कार होता है जिसके साथ रहेंगे जल्दी ममत्व हो जाता है, किसी में संस्कार रहता है नहीं होता, चिंतन करेंगे। सतयुग में हमारे पहला परिवार छूटा, दूसरा, पहले वाले पीछे छूट गए, चक्र चलता आया द्वापर से, कितने मनुष्य आत्माएं हमारे संबंध में आए, पीछे छूटते गए, और अब जो हमारे साथी हैं वो भी पीछे छूट जाएंगे। जिनसे कर्मों का कड़ा बंधन है समीप आते हैं, जिनके कर्म बंधन समाप्त हुए चले जाते हैं। एक सूक्ष्म बात सोचने की है, एक व्यक्ति ने यहाँ शरीर छोड़ा है, उसके घर में क्रंदन है, रुदन है, जहाँ वो जन्म ले रहा है वहाँ आनंद है। एक ही आत्मा की एक ही समय में दो फीलिंग्स, एक तरफ क्रंदन रुदन, दूसरी तरफ आनंद। बदलते आए हैं हम सब ये शरीर, जब आए थे तो अकेले आए थे, जाएंगे तो भी अकेले जाएंगे। लेकर जाना है बाबा का खजाना बहुत ज्यादा। अब बाबा ने देखो हमें क्या किया, स्वर्ग की नई दुनिया दिखा दी, और बाबा की मुरलियों में आ रहा है, हम रोज सुनते हैं, आगे भी सुनेंगे, एक दूसरे के सामने बैठेंगे, ध्यान में जाएंगे, स्वर्ग देखते रहेंगे। तो सुंदर चीज जब देखेंगे तो यहाँ की चीजों से ममत्व हटता जाएगा। ये मिलने जा रहा है तो ये छूटना कुछ भी नहीं, ये तो कुछ भी नहीं उसकी भेंट में ममत्व। देखो एक परिवार की कल्पना करो, माँ बाप का बच्चों से ममत्व है, वो उसके लिए धन इकट्ठा करेंगे, लेकिन अगर सच्चा प्यार है तो वो उसको योग्य बनाएंगे। एक माँ के दो बेटे मिलिट्री में हैं, उसका प्यार है देश से भी और बच्चों से भी, वो तिलक लगा के भेज देगी, जाओ चाइना के बॉर्डर पर। मोह है, कहेगी छोड़ो ये नौकरी, घर में रहो। मोह बंधन डालता है, मोह दुखों का कारण बनता है, और मोह का बीज है मेरा। इसलिए बाबा ने राजयोग की परिभाषा दी है, साकार मुरली से ये परिभाषा है, राजयोग माना मेरा कुछ भी नहीं। ये स्थिति हमें जल्दी से जल्दी बना लेनी है। समय बदल रहा है हम सब देख रहे हैं, और संसार में भय का माहौल है। हम स्मृति स्वरूप होकर इस मोह को नष्ट करेंगे, क्योंकि इसकी गति बहुत सूक्ष्म है, इसलिए इसमें समय लगता है। स्मृति स्वरूप होते जाएंगे, और देखो बाबा ने क्या किया, बाबा की प्रैक्टिस आप देखो। ब्रह्मा बाबा जो सबसे महान तपस्वी हुए हैं, जिन्होंने हम सबके लिए आदर्श प्रस्तुत किया है, यज्ञ की शुरुआत ही की, धन संपदा बच्चे परिवार सब तेरे, हमें भी ये करना होगा, हम भी तुम्हारे, हमारे जो कुछ हैं वो भी सब तुम्हारे, नहीं तो ये मोह बहुत सताएगा। आप सभी ने कई कहानियां सुनी होंगी, जब नोटबंदी हुई कई कई माताओं के पास कितने करोड़ों के नोट थे, सब बेकार हो गए, कितना कष्ट हुआ उन्हें, छुपा के रखे थे, बच्चों की भी पालना अच्छी तरह से नहीं की, कष्ट हुआ बहुत ज्यादा। तो ममत्व जो पदार्थों में भी हमारा है, उससे हम मुक्त होंगे स्मृति स्वरूप होकर। अर्जुन की बात याद करें, भले ही वो शास्त्रों की बात है, पर सबके लिए बहुत सुंदर प्रेरणा है। मोह होता है उसको, मोह होते ही वो कर्तव्य विमुख होता है, कर्तव्य भूलता है, और भगवान उसको उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं कि तुम अधर्म के विरुद्ध युद्ध कर रहे हो, ये तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है, जो तुम्हारे सामने खड़े हैं ये सब आत्माएं हैं, ये मरती नहीं हैं, ये अब से पहले भी थी, अब के बाद भी रहेंगी। तो अर्जुन एंड में कहता है, सारी गीता का सार ही ये है, हे भगवान मैं स्मृति स्वरूप हो चुका हूं, मेरा मोह नष्ट हो गया, अब मैं युद्ध के लिए तैयार हूं। तो बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, और ब्रह्मा बाबा का अनुभव अगर लास्ट का आप सुने, 1968, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस थी, ये देह छोड़कर घर जाना है फिर वापिस आना है। बाबा वर्णन भी करते थे इसका, बच्चे जो कुछ इन आंखों से दिखाई देता है वो सब नहीं रहेगा, बहुत गहरी प्रैक्टिस है। आज के संदर्भ में इस प्रैक्टिस का विशेष महत्व है, युग परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, हम सभी को न जाने इन आंखों से क्या क्या देखना है अगले 10 सालों में, वो सब कुछ देखना है जो देखना बहुत कठिन होगा, हर एक को उससे गुजरना पड़ेगा। मैं बाबा की एक लाइन याद किया करता हूं कभी कभी, मुरली की आप सबने सुनी है, मनुष्य सरसों के दानों की तरह पिस जाएंगे, मोह अति कष्ट देगा क्योंकि सब कुछ नष्ट होगा, जो मनुष्य ने कमाया है, जिसमें उसका बहुत ममत्व है, जिसमें उनकी बहुत आसक्तियां हैं, जिनसे उनकी बहुत कामनाएं हैं, वो सब छूटेगा। और मैं बाबा की एक अव्यक्त मुरली की एक बात और याद करता हूं, मैं भी याद करता हूं आजकल बहुत, हर व्यक्ति को निराधार होना है, आधार सबने बहुत बनाए हुए हैं। अब देखो हमारे यहां ऊपर हॉस्पिटल सील कर दिया गया, अब किसी को कोई भारी तकलीफ हो वो भी नहीं जा सकता। एक छोटी सी परिस्थिति आप देखो, धन की कमी तो संसार में बढ़ती जा रही है बहुत ज्यादा, और इसका अगला कदम चोरी चकारी बहुत हो सकता है। हमें ये सीखना होगा कि बिना दवाइयों के भी जीवन कैसे चले। अभी मुझे कोई सुना रहा था शांतिवन में ही, मैं आया कि डॉक्टर लोगों ने और कई जो इस पेशे से जुड़े हैं धंधा बना लिया है, किसको जुकाम लेकर भी आया, चेक किया कोरोना है तुमको तो इतने पैसे लगेंगे, हो जाओ भर्ती। लोगों ने विरोध किया है बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में कि गलत रिपोर्ट दे रहे हैं, डॉक्टर्स कमाई का साधन बना रहे हैं। देखो ये सब पाप की अति, करनी चाहिए उन्हें मदद, पैसे के चक्कर में लोगों को भयभीत कर रहे हैं। तो हमें निराधार होना है, निराधार, निराधार पहले, निराकार के पहले निराधार, एक बाबा के आधार पर जीना। बीमारी भी है तो सुप्रीम सर्जन का आह्वान कर लो, आ जाओ मदद मिलेगी। कोई और कष्ट है उसका आह्वान कर ले, मदद मिलेगी। तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी उसके आधार से जीने की। तो हम सब तैयारी करें कि देह से पहले हमारा मोह ना हो, इसलिए देह से न्यारेपन का अभ्यास, घरों में सभी को आत्मा देखने का अभ्यास, यज्ञ में मेरा कुछ नहीं, वो तो है भी नहीं, लेकिन अगर कुछ हो गया हो मेरा, वो भी मेरा नहीं, यज्ञ बाबा का, हम उसके ट्रस्टी, हम उसका कार्य संपन्न करने वाले, उसके कार्य को सफल करने वाले हैं, इससे हमारी कमाई होती रहेगी। तो चेक करेंगे, पदार्थों को चेक करें, ये व्यक्तिगत बिल्कुल चेकिंग का विषय है कि हमारे पास जो कुछ है उससे हम अनासक्त हैं। हर एक के पास साधन तो होते ही हैं, हम उसको केवल यूज का साधन मानते हैं या उसमें बहुत मेरापन है। आपके पास एक बहुत अच्छी बाइक ही है, अब आपने आज तक उसे यूज किया है, कल वो जाए तो तो हम परेशान ना हो जाए। आपके पास रहने सहने की बहुत सुंदर व्यवस्थाएं हैं, कल वो खत्म हो जाए तो हम दुखी ना हो जाए कि हमें तो वही चाहिए। डिपेंडेंट ना हो हम किसी भी चीज के, बिल्कुल निराधार हो जाए, तो सभी स्मृति स्वरूप होने का बहुत अच्छा अभ्यास करेंगे। और इसमें सबसे ज्यादा मदद करता है हमारे पांच स्वरूपों का अभ्यास, जिसमें हमारी जो ऊंचाई है, हमारी जो महान प्राप्तियां हैं, वो धीरे धीरे हमारे नशे में आती जाएंगी। और यहां जहां भी हम अटके हुए होंगे, जहां भी लगाव होगा, उससे रस्सियां ढीली होके समाप्त होती जाएंगी। मैं सोचा करता हूं अगर हम अपने को मुक्त नहीं करेंगे तो समय और परिस्थितियां जबरदस्ती हमको मुक्त कर देंगी, और वो मुक्त होना भारी पड़ेगा, हमारी खुशी छीन लेगा, हमारे सुख पर आघात करेगा। इसलिए हम ज्ञान युक्त होकर स्वयं को हर चीज से मुक्त करते चले। नस्तो मोह स्मृति एक बेफिकर बादशाह की स्थिति है। इस स्थिति में हम अनेक सुख संबंधनों से मुक्त रहकर सहज योग युक्त हो सकते हैं। हमारे योग में भी बहुत बड़ी बाधा होती है हमारा लगाव। मैं आपको एक अपना व्यक्तिगत अनुभव सुना देता हूँ, जहां से मुझे इस चीज की बहुत गहरी फीलिंग हुई थी। बात तो अब से बहुत साल पहले की है, 1972 मैं गया अपने लौकिक में, सौगातें मिली बहुत सारी अच्छी अच्छी, तब यज्ञ में बहुत अच्छी चीजें तो होती नहीं थी। दीदी दादी दोनों ही यहाँ नहीं थी, एक की तबीयत खराब थी, एक कहीं बाहर गई थी। अब मैं किसे दूं वो सामान, तब तक वो मेरे पास था। अब मैं उसे रोज देखता था, बड़ी अच्छी अच्छी चीजें हैं। सोचा अभी दादी पूछती थी भाई इनमें से कुछ चाहिए तो ले लो। मैं सोचता था ये चादर बेडशीट बड़ी अच्छी, ये ले लूंगा। मैंने क्या देखा, बुद्धि योग पर इसका इफेक्ट आ गया। योग लगाने में मेहनत होने लगी। तुरंत समझ में आ गया कि पदार्थों से भी आसक्ति हमारे बुद्धि योग पर आघात करती है। ये बहुत अच्छी चीज मैंने सीखी तब से ही कि नहीं, सब कुछ तेरा। हमारे पास संग्रह वृत्ति भी होगी बहुत कुछ इकट्ठा करने की, भले ही हम उसमें आसक्त न भी हों, तो भी हमारी बुद्धि योग में कमी पड़ जाएगी। इन चीजों को ध्यान रखते हुए हम आत्मिक दृष्टि का अभ्यास करेंगे, और कहीं भी लगाव हो, कुछ भी हमसे जाता हुआ दिखे, तो कुछ असर तो नहीं हो रहा। आपको बताऊं, बाबा साकार में जब यज्ञ छोटा था, जब सेवा शुरू नहीं हुई थी, तो भाई बहनों से बड़ी सुंदर सुंदर प्रैक्टिस कराया करते थे कि तुम्हारे सब परिवार वाले डेड बॉडीज पड़ी हैं, देखो तुम्हारी स्थिति क्या है। ये सब प्रैक्टिस कराई बाबा ने उन सब को तैयार करने के लिए। भाई राजू भाई ने प्रश्न किया है, मुरली में आया है, स्वयं पर विजय, दूसरों पर विजय, प्रकृति पर विजय, ये होंगी तो तुम विजय माला के मन के बन जाओगे। स्वयं पर विजय अर्थात हम किसी भी चीज के अधीन नहीं, कर्मेंद्रियां कंट्रोल में, जिसको बाबा ने कहा स्वराज अधिकारी। ये नहीं हमें सुगर तो है लेकिन आज भोग में मालपुआ बना है, अब ये तो भोग है ना, बाबा का भोग तो खाना ही चाहिए, खा लिया सुगर तो बढ़ गई। कोई भी चीज, मैं तो एक उदाहरण दिया क्योंकि मैं ऐसा देखता हूं लोगों को जिनको 400-400 सुगर है, वो भी जब बूंदी बनती है तो कहते हैं थोड़ी और दे दो भाई, इच्छा हो रही बहुत खाने की। अरे भाई बढ़ जाएगी, देखेंगे, कई दिन नहीं खाएंगे। स्वयं पर विजय, स्वयं की कर्मेंद्रियों पर, आसक्तियों पर, संस्कारों पर विजय, सभी विकारों पर विजय, ये स्वयं पर विजय है, अपने विचारों पर विजय। बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और जिन जो स्वयं पर विजयी हैं वो दूसरों पर सहज विजयी हो जाते हैं। दूसरों पर विजयी होने का अर्थ है दूसरों के दिलों पर राज करना। मैं आपको 69 की एक मुरली का महावाक्य सुना देता हूँ, आप पढ़ भी सकते हैं, दिसंबर की मुरली है। एक भट्टी हुई थी जो पुरानी दादियां थी उन सब की, दूसरी भट्टी हुई उन पुरानी दादियों में भी जो 18 सीनियर मोस्ट दादी थी उनकी। तो ये जो सीनियर मोस्ट 18 दादियों की भट्टी हुई थी, 20 दिसंबर थी या उससे आगे थी, आप देख सकते हैं, उसमें बाबा के महावाक्य थे, जो जितनों के दिलों पर राज करेंगे वो उतनों के राजा बनेंगे। जैसे यहां वोटिंग होती है, ये वोटिंग होगी किसने कितनों के दिलों पर राज किया हुआ है, कितने लोग उसको अपना राजा मानते हैं। तो दूसरों पर विजय, हम उन्हें कुछ भी कहें वो हमारी बात स्वीकार करें। हम दूसरों को, संगठन में हम रहते हैं, आपके साथ 5 लोग काम कर रहे हैं आपके डिपार्टमेंट में, उन पर विजय माना, वो उनके आपके संपूर्ण साथी, कोई विघ्न नहीं बीच में। और प्रकृति पर विजय, ये बहुत बड़ी चीज है, प्रकृति का जो ये शरीर है 5 तत्वों का, इसके आकर्षण पर विजय, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है हमारा। जो इस देह के आकर्षण पर विजयी हो जाते हैं वो संपूर्ण प्रकृति पर विजयी हो जाते हैं, और आगे चलकर जब प्रकृति बहुत बड़े तूफान करेगी तब वो अपने मालिकों के आदेश का पालन करेगी। इसलिए मैंने आपको पहले ही एक संकल्प दिया, प्रकृति को रोज वाइब्रेशंस देते चलेंगे। प्रकृति का दूसरा अर्थ होता है अपनी नेचर, नेचर पर भी विजय। हमारी नेचर वर्तमान नहीं, हमारी नेचर जो हमारी अनादि आदि नेचर है वो हो जाए। ऐसा नहीं मेरी तो प्रकृति बड़ी नाजुक है, मेरी नेचर तो फीलिंग की है, मेरी नेचर तो जिद की है, मेरी तो नेचर हो गई है किसी ने कुछ कहा जल्दी मूड ऑफ हो जाता है, इन पर भी विजय। पर इम्पोर्टेंट चीज है स्वयं पर विजय, अपने मन पर विजय, मन के विचारों पर विजय, अपनी इमोशंस पर विजय, भावनाओं पर विजय। और बुद्धि की विजय, ये बहुत सूक्ष्म चीज है, बुद्धि में जो अहम रहता है उस पर विजय, संस्कारों पर विजय। अर्थात हम अपने ओरिजिनल संस्कारों को धारण कर लें, वर्तमान संस्कारों पर हमारी विजय हो जाए, चाहे वो कोई भी हो, विकारों से जुड़े हुए हों, क्रोध का भी संस्कार हो सकता है, बुरा बोलने का भी संस्कार हो सकता है, किसी को कष्ट देने का भी संस्कार हो सकता है, उन सब को रियलाइज करके उन पर हम विजयी बने, उनको जीत लें। ठीक है राजू भाई, विस्तार तो बहुत है। तो सभी निर्मोही बनकर बाबा के साथ चलेंगे, और याद रखेंगे निर्मोही आत्माएं दूसरों को निर्भय बना सकेंगी। बहुत अच्छी है, स्लोगन के रूप में आप बात याद रखेंगे, निर्मोही आत्माएं बेफिकर बादशाह रहेंगी। हमारा कुछ है ही नहीं, जाने दो ना, सब बाबा को अर्पित कर दिया था, जाएगा उसका जाएगा, हमारा थोड़ा ही जाएगा, हम भी अपने नहीं है, हम भी उसके हैं। देह जाएगा, ये जाएगा ही, छोड़ना ही है इसको, तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे और मस्त रहेंगे, जो है उसमें ही आनंद, जो नहीं है ओम शांति, उसको वाई वाई करेंगे, जो है उसका आनंद लेंगे, ये हमारी निर्मोही स्थिति बन जाएगी। टॉपिक तो निर्मोही का बहुत बड़ा है, पर आप सब ज्ञानी आत्माएं हैं, विस्तार कर सकेंगे। ओम शांति।
Bye-bye।